सुधामयी
सर्वसमर्थ
पतित पावनी
अहे दुखी कृपा से
दुखी प्राणियों के हृदय में
त्याग का बल
एवं
सुखी प्राणियों के हृदय में
सेवा का बल
प्रदान करें
जिससे वे
सुख दुख के
बंधन से
मुक्त हो
आपके
पवित्र प्रेम का
आस्वादन कर Hare Krishna.
पहले मान लिया फिर प्राप्त कर लिया, किसी ने प्राप्त कर लिया तब मान लिया। मुझे ठीक मालूम है आज के युग में बड़े विचारक जो परमात्मा और आत्मा की चर्चा ही नहीं करते बल्कि निषेधात्मक बात करते हैं, हैं जय कृष्णमूर्ति। उन्होंने जो आखिरी किताब लिखी है उसमें ये लिखा है कि प्रेम की जागृति ही मानव के विकास की चरम सीमा है, यानी प्रेम प्राप्ति मानव जीवन की चरम सीमा है। भैया प्रेम प्राप्ति तो तभी न होगी जब कोई प्रेमास्पद होगा, प्रेम प्राप्ति बिना प्रेमास्पद के हो जाएगी क्या? तो इस तरह से उन्होंने भी अपनी थीसिस में अपनी खोज में परमात्मा की ओर संकेत किया है। तो मैं आपसे ये नम्र निवेदन करना चाहता था कि परमात्मा है इसमें लेस मात्र संदेह नहीं करना चाहिए, है जरूर, भले ही हम नहीं जानते हो कैसा है, भले ही हम नहीं जानते हो कहाँ है, ये बात को भले ही नहीं जानते हो पर है, इस बात को जरूर मानना चाहिए। जो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, महत्व को स्वीकार कर लेता है, उसमें परमात्मा का अपनत्व आ जाता है, और जब परमात्मा का अपनत्व आ जाता है तो अखंड स्मृति अगाध प्रियता उदय हो जाती है। इसी का नाम भजन है। अभ्यास का नाम भजन नहीं है, अभ्यास का नाम भजन नहीं है, स्मृति और प्रियता का नाम भजन है। तो वो प्रियता अपनत्व से उदय होती है, आवश्यकता से उदय होती है, और आवश्यकता अस्तित्व से सजीव होती है। आकर वैसे आवश्यकता तो है पर ऐसा है ही नहीं, ऐसा मान लो तो क्या कहोगे? तो अधीर होकर कहोगे अरे भैया चैन तो है ही नहीं, कभी न मिला है न मिलेगा, मिल सकता है, हंसते रहो रोते रहो बस यही जीवन है, ऐसा कहने लग जाओगे। पर ऐसा कहना किसी मानव के सजग मानव की बात ये नहीं है, ये हारे हुए मानव की बात है, ये जड़ता में आबद्ध हुए मानव की दशा है, ये दशा है, ये जीवन का सत्य नहीं है। जीवन का सत्य यही है कि जिस जो चीज आज हमारे जीवन में हमें मान के रूप में है कल वो प्राप्ति के रूप में होना चाहिए, जो चीज मान के रूप में है वो प्राप्ति के रूप में होना चाहिए, ये ध्रुव सत्य है। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि क्या आज हम और आप प्रभु का आश्रय ले सकते हैं, प्रभु आश्रित हो सकते हैं, क्या हम और आप आज अचिंतन और अचा हो सकते हैं? भाई उत्तर में कहना पड़ेगा अगर होना चाहते हैं हो सकते हैं।
उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माता और बहनों और भाई, एक प्रश्न मेरे पास आया है, पहले वो प्रश्न पढ़कर सुना देती हूँ मैं और उत्तर संत वाणी में सहज भाव से स्वतः ही निकल आया, फिर भी मैं दोहरा दूंगी। इंद्रिय दृष्टि से संसार सत्य प्रतीत होता है और उसमें रमणीयता का बोध होता है, बुद्धि दृष्टि से संसार परिवर्तनशील व मिथ्या प्रतीत होता है, अनुभव से आत्मा का यानी अपने अस्तित्व का बोध होता है, इस बोध से शांति तो मिलती है, वासना व चाह भी मिटती दिखाई देती है लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती, प्रेम का स्रोत नहीं खुलता, तो क्या प्रेम के स्रोत खोलने की भी कोई साधना है? ज्ञान से शुष्क हृदय में प्रेम बिना कुछ रस नहीं आता, इसे कैसे पावे? प्रश्न बहुत अच्छा है और सच्चाई से किया गया है। पहली बात तो यह है कि प्रेम का स्रोत परमात्मा है, ज्ञान का स्रोत परमात्मा है, शांति का स्रोत परमात्मा है, इसलिए जीवन में जब शांति आती है तो भी सरसता मालूम होती है, शांति का भी एक अपना रस होता है, और जब ज्ञान के आधार पर व्यक्ति निज स्वरूप का अनुभव कर लेता है तो उसमें भी एक रस होता है, निज स्वरूप का अनुभव भी सरस होता है। और आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर जब साधक परम प्रेमास्पद प्रभु से अपनी आत्मीयता स्वीकार कर लेता है तो उसका भी एक बड़ा भारी रस होता है प्रियता का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में शांति आ जाए और नीरसता बनी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि ज्ञान के आधार पर अमरत्व का बोध हो जाए और जीवन नीरस रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी साधक की जो अपनी बात है उस बात को मानकर हम लोग चलें, आगे बढ़ें, मानकर चलें हम लोग। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न लिखा है कि प्रेम का स्रोत कैसे खुले, ये खास बात है। तो अभी हम लोगों ने संत वाणी में सुना कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करना एक अनिवार्य तत्व है। परमात्मा है इसमें कभी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। अगर संदेह करेंगे तो उनकी सत्ता को मानने का जो अपने जीवन पर शुभ परिणाम होना चाहिए वो नहीं होने पाएगा। इसलिए संदेह मत करो, परमात्मा है, कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, इन बातों की जानकारी अपने लोगों को नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता है ऐसा जो लोग मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं। उनकी सत्ता में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। तो प्रेम के स्रोत का जो पता लगाना है अपने को और उस स्रोत के प्रवाह में रसमय बनना है अपने को, तो पहला प्रश्न होगा कि हमने प्रभु की सत्ता को माना कि नहीं माना। तो आप कहेंगे कि हमने माना है, ठीक है, माना है कि नहीं माना है, माना है। बिना माने काम चल सकता है, नहीं चलता है। मान लेने से कोई नुकसान होता है, नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भाई मान लोगे तो कोई खतरा आ जाए, सो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो तत्व तो है ही, पहले ही से विद्यमान है, लेकिन उसको हमारी आपकी स्वाधीनता इतनी पसंद है कि वो न मानना चाहे तो न माने। हम लोगों में से कोई भी भाई बहन ऐसे हो कि भगवान की सत्ता को न मानना चाहे तो न मानने से भगवान नाराज नहीं होते हैं, बड़ी उदारता है उनमें। और हम सब लोग उनके अपने ही बच्चे हैं, सौतेले चचेरे फुफेरे ममेरे तो हैं नहीं, सब सगे ही हैं उनके, क्योंकि उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं तो कहाँ से आएगा। तो सब एक ही माँ बाप के हैं, सब सगे हैं हम लोग उनके। इसलिए अगर कोई उनको नहीं मानता है तो उस न मानने वाले पर भी परमात्मा नाराज नहीं होते। मैं भूल गई लेकिन वो तो नहीं भूलते, मैं अभिमान में आ गई लेकिन उनके में ऐसा कोई दोष नहीं आता है। इसलिए वो मानने वाले बच्चों को भी और न मानने वाले बच्चों को भी सबको जगत पिता जगत जननी हो करके संभालते ही रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन की रचना ऐसी है, अपने आप में हम लोग अपनी सब बातों को पूरी करने में असमर्थ प्रमाणित होते हैं। इस कारण से जीवन की बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम लोग परमात्मा को माने, क्योंकि रस चाहिए। नीरस जीवन कोई आदमी पसंद नहीं करता है, और रस का स्रोत, रस का आधार, रस का अनंत सागर एक वो ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए उनके और हमारे बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है। वो रस का अनंत सागर है और हम लोग रस के प्यासे हैं, तो दोनों का संबंध कभी टूटेगा? जी नहीं टूटेगा। मुझको जो चाहिए सो उसके पास भरा पूरा है। तो चारों ओर घूम करके देख लो, दुनिया के सब तमाशे देखने के बाद फिर जो अपना ध्यान है, अपनी रुचि है, अपना मन है, वो कहाँ जाके टिकेगा? तो उसी में टिकेगा जिसके पास हमको तृप्त करने के लिए प्रेम का रस है, और कहीं नहीं टिकेगा। भक्तों ने बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में इन बातों को प्रकट किया। भक्त की वाणी है, वो कहते हैं, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, संत की वाणी है। कहीं आधार नहीं मिलेगा, जैसे कोई समुद्र पर चलता हुआ जहाज है और उस पर बैठा हुआ पंछी अगर जहाज को मस्तूल को छोड़ करके उड़ जाए तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं में उड़ता 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 हुआ बैठने का आधार कहाँ मिलेगा? फिर उसी जहाज पर मिलेगा। ऐसी दशा हम लोगों की हो गई है। हम सब लोग प्रेम के धातु से रचे गए हैं। हम सब भाई बहनों के भीतर उसी पवित्र मधुरतम प्रेम रस की प्यास भी है। तो थोड़े दिन के लिए आदमी क्या करता है कि देखे हुए संसार में लिपट करके उस प्यास को मिटाने की चेष्टा करता है। कभी भी एक समय रहता है जबकि माता पिता बड़े प्यारे लगते हैं, एक समय होता है जबकि पति पत्नी बहुत प्रिय लगते हैं, एक समय होता है जबकि बाल बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। तो ऐसे करके हमारा केंद्र तो बदलता जाता है। कभी कुछ प्रिय लगा, लेकिन सब कुछ आपने देख लिया, सब चख लिया, तृप्ति हुई क्या? जी नहीं हुई। तो हम लोग उस जहाज के पंछी हो गए कि नहीं, कि जिसने अथाह सागर में जहाज का सहारा छोड़ दिया, वही हुए ना? अब घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, कहाँ मिलेगा वह रस? उन्हीं जहाज पे आवे, फिर उसी से संबंधित हो जाओ। तो बड़ी आवश्यक बात है हम लोगों के लिए कि कुछ कुछ बातें तो संसार से संबंध जोड़ करके काम चल गया, लेकिन जो जीवन की खास आवश्यकता है कि प्रेम के स्रोत के खुले बिना, हृदय में प्रेम के रस के प्रवाहित हुए बिना किसी भी प्रकार से तृप्ति होती ही नहीं है, तो क्या करें? तो संत जन कहते हैं कि उस प्रेम स्वरूप परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करो। सबसे पहले यह कहो कि परमात्मा है, तो जब उसकी सत्ता को हम लोग मान लेते हैं तब उससे संबंध जोड़ने का साहस होता है। तब आदमी सोचता है कि रस स्वरूप परमात्मा है और मुझ में रस की प्यास है तो मुझे उसी के पास जाना चाहिए। ठीक है जी? जैसे कोई खास बीमारी किसी को हो जाए और किसी नगर में जाने पर उसको सुनने को मिले कि इस बीमारी की चिकित्सा करने वाला एक निपुण वैद्य यहाँ पर है, यह सुनने को मिलेगा तो जिनको बीमारी नहीं है वो तो परवाह नहीं करेंगे, लेकिन जिनको बीमारी है वो क्या सोचेंगे? जी उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो ऐसे ही हम सब भाई बहनों के भीतर परम पवित्र और कभी न घटने वाला और कभी न मिटने वाला प्रेम रस जो है उसकी प्यास है। भीतर आवश्यकता हम लोग अनुभव करते रहते हैं और उस रस के अभाव में किसी तरह से जीवन का भार ढोते रहते हैं, तो भक्तजन कहते हैं कि परमात्मा है और वह प्रेम का अथाह सागर है, बड़ा रस है उसमें, बड़ा रस है उसमें। रस स्वरूप परमात्मा है, प्रेम स्वरूप परमात्मा है, रसिक शिरोमणि परमात्मा है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो सुना है और अपने भीतर उसकी आवश्यकता है, तो जिसकी आवश्यकता होती है उस पर ध्यान जाकर के टिकता है कि नहीं टिकता है। तो मेरे भाई ने पूछा कि रस के स्रोत के खुलने की साधना बताओ। तो साधना की पहली बात तो ये है कि उनकी सत्ता स्वीकार करो, और दूसरी बात ये है कि वे प्रेम स्वरूप हैं, ये उनकी महिमा, ये उनका स्वरूप, इसको स्वीकार करो। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने अपने प्रेम से ही हम लोगों को बनाया है, तो हमारे और उनके बीच में अटूट संबंध है, इस बात को स्वीकार करो। आपको यह जान करके बड़ा हर्ष भी होगा और बहुत आश्चर्य भी होगा, फिर भी एक सच्ची बात है तो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि 10.5 वर्ष की उम्र जब थी शरीर के हिसाब से मेरी, तो उसी समय से सांसारिक दृष्टि से बहुत प्रकार के दुख देखने को मिला, एकदम प्रतिकूल, बहुत बातें मन के खिलाफ होती रही। तो मैं भीतर भीतर परमात्मा से बहुत नाराज हो गई, बचपने की बात है, बहुत नाराज हो गई। मानती तो जरूर थी कि परमात्मा है, इसलिए मानती थी कि हमारा किया कराया सब बिगाड़ देते थे, इसलिए मानती थी कि है तो जरूर, अगर वो नहीं होता तो मैं जैसा चाहती वैसा कर लेती, तो मुझसे ज्यादा जोरदार कोई शक्तिशाली है जो हमारा किया कराया सब उलट के रख देता है, इसलिए मैं मानती थी। संत के पास जब मैं आई तो हमने कहा कि स्वामी जी महाराज, संसार में जीवन का आधार बनाने के लायक कुछ भी नहीं है, ये बात मुझे बहुत जल्दी मालूम हो गई। अब तो मैं कहती हूँ कि उनकी कृपा थी, ज्यादा देर नहीं लगी, बहुत जल्दी मुझको पता चल गया कि इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी जीवन का आधार बनाने के लायक नहीं है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, हमने कहा महाराज यहाँ तो कुछ है नहीं अपने काम के लायक, और निराधार जीवन मैं संभाल नहीं सकती, मैं थक गई, अब कहाँ तक ढोए इसको। तो मुझे तो महाराज कुछ ऐसा अचल आधार चाहिए जीवन में कि जिसका सहारा ले करके हम निश्चिंतता की सांस ले सके। ये मैंने प्रश्न सुनाया महाराज को, वे तो अंतर्यामी थे, अंतर्दृष्टि थी उनकी, वो साधकों के भीतर की दशा को जान जाते थे, तो उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, उनको पता चल गया कि ये भगवान से नाराज हैं, तो नाम नहीं लिया। कहने लगे कि देखो, इस संसार में भले ही तुम्हारे अपने कहने के लायक कोई नहीं दिखाई देता है, तो बात तो सच्ची है, अपना होकर यहाँ रहने वाला कोई है नहीं, लेकिन एक है जो सभी को अपना मानता है और सबको अपना करके रखता है, और तुम भले ही उसे भूल जाओ वो कभी तुमको भूलता नहीं है, अगर तुम पसंद करो तो उससे तुम्हारी सगाई करा दे। ऐसे कहा स्वामी जी ने, भगवान का नाम नहीं लिया, कहा एक तो है, कितनी सच्ची बात है अभी आपने सुना। कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे भीतर प्रेम रस की मांग हो और उसकी पूर्ति की सामग्री न हो दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें अनंत जीवन की मांग हो और तुम नाशवान शरीर में फंसे रहो, ये कैसे सकता है, तो ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे हृदय में परम पवित्र प्रेम रस की प्यास है तो तुम विश्वास करो कि उस रस का अनंत सागर भी यहाँ है। मानना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बनाने वाला इतना अधूरा है कि मेरे भीतर मांस पैदा कर दिया और सामग्री बनाई ही नहीं। तो ऐसा अपूर्ण नहीं है परमात्मा। और आप तो भाग्यशील हैं, भगवत भक्त की नगरी में आप पैदा हुए हैं, रहते हैं। मैं तो ऐसे समूह में रही हूँ जहाँ के लोग भगवान का नाम लेना ही बेवकूफी समझते हैं, लेकिन बड़ा आनंद आता है मुझे उनसे बातें करने में। तो महाराज जी ने मुझको बहुत छिपे हुए ढंग से परमात्मा की ओर संकेत किया और कहा कि देखो, मनुष्य का जीवन हमेशा के लिए अतृप्त अतृप्त अभाव में रहेगा, ये कभी हो नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए नहीं। जिसके भीतर परम पवित्र मधुरतम प्रेम रस की प्यास है, उसका जीवन प्रेम रस से भरपूर जरूर होगा। तो संत के वचन में बड़ी शक्ति थी, बड़ा बल था उनमें, और इतनी शक्ति थी कि हमारा जितना भी तर्क था और दर्शन और साहित्य और विज्ञान के पढ़ने का सब प्रभाव था, उन सबको दबा करके संत की वाणी प्रधान हो गई। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम सभी भाई बहन इस दुनिया में बहुत दिनों तक धन में और तन में और बुद्धि में और चालाकी चतुराई में रह करके बिता दिए। अब जो समय शेष बचा है वह उस अनंत परमात्मा के संबंधी होने के नाते उनसे मिल करके उनके प्रेम रस से भरपूर होकर बितावें, बड़ा आनंद आएगा। उसके समान आनंद और कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैं सोचती हूँ अब कि अगर वो नहीं हुआ तो जीने का मजा ही क्या आया। तो साधना क्या हो गई? पहली बात है इस सत्य को स्वीकार करो कि परमात्मा है। दूसरी बात है इस सत्य को स्वीकार करो कि मुझे जो चाहिए वह सब कुछ वही भरपूर कर सकता है। और तीसरी बात यह स्वीकार करो कि उसी परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है। ये तीन ही बातें हैं स्वीकार करने की। परमात्मा है और उसकी महिमा का वारा पार नहीं है, और उसी से मेरा नित्य संबंध है, उसको छोड़कर और किसी से मेरा नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध नहीं है, और माना हुआ तो झूठ मूठ को बहुतों से संबंध बनाया हम लोगों ने, लेकिन सच्चा नाता सच्चा संबंध केवल परमात्मा से है। ऐसा जो लोग स्वीकार कर लेते हैं उनके जीवन में प्रभु की ओर से दिया हुआ प्रेम रस भर जाता है। अपने में जो बीज रूप में प्रेम तत्व विद्यमान है वह बढ़ता है, प्रभु की ओर समर्पित किया जाता है, और उनकी ओर से जो आने वाला प्रेम रस है वो मनुष्य के अतृप्त जीवन को दूर कर देता है। तो कर्म ज्ञान और प्रेम तीनों को एक साथ मिलाइए, अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म करना भी मनुष्य को ही पसंद है, और ज्ञान के बिना कर्म बनेगा नहीं, इसलिए ज्ञान भी अपने पास है, उससे भी काम लेंगे। और ज्ञान के द्वारा असत के त्याग किए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति होगी नहीं। तो तीनों को ही साथ लेकर चलो। शरीर में बल मालूम हो तो प्रभु की सृष्टि की सेवा में लगा देना, और ज्ञान के प्रकाश में संसार को निहसार जानकर इसको अपने जीवन का आधार मत बनाना, और आस्था श्रद्धा भक्ति के आधार पर प्रभु को अपना मानकर उनसे आत्मीय संबंध स्वीकार कर लेना। यही उपाय है जिससे जीवन में प्रेम का रस स्रोत बढ़ जाता है। और एक बार प्रेम का रस बढ़ गया तो सब जन्म जन्म के सब विकार भी नष्ट हो जाते हैं, सब राग द्वेष भी खत्म हो जाता है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई आवश्यकता शेष रहती नहीं है। और यदि उस प्रेम रस की वृद्धि जीवन में नहीं हुई तो सब रस फीके पड़ते हैं, किसी से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। हम लोग गाय भैंस नहीं है कि हरी हरी घास से संतुष्ट हो जाए, समझ में आता है जी? आप गाय भैंस नहीं है, आप बैल और घोड़े नहीं है कि घास भूसी से संतुष्ट हो जाए। आपके जीवन की रचना में बड़ी ऊंची योजना है, बहुत ही विशेष प्लानिंग से आपको बनाया गया है। इसलिए इस मरणशील शरीर में रहते रहते उस अमर परमात्मा के प्रेमी होने पर इस जीवन के चमत्कार का प्रकाश जगत में होता है। भाषा समझ में आ रही है? हाँ, तो रहती हूँ। वो भाई का प्रश्न ही है कि ज्ञान के आधार पर यह जान करके कि मेरा और संसार का नित्य संबंध नहीं है, फिर भी रस नहीं आता है, तो अब रस की वृद्धि के लिए और नया साधन क्या करें? तो नया साधन यही करो, क्या करो कि श्रद्धा भक्ति, शुद्ध श्रद्धा भक्ति, तर्क मत करना, कर्म करते हुए प्रभु की प्यारी प्यारी सृष्टि की सेवा करना। और ज्ञान के आधार पर क्या करोगे कि जिस सृष्टि की सेवा करो उस सृष्टि को अपने जीवन का आधार मत बनाना, ये ज्ञान है। और प्रेम क्या है कि जो सृष्टि का मालिक है, जो मेरा मालिक है परमात्मा, उसी से मेरा नित्य संबंध है, वही मेरा अपना है और कोई अपना हो नहीं सकता। तो परमात्मा के आत्मीय संबंध को स्वीकार करने से प्रेम का रस स्रोत हृदय में खुलता है। तो कर्म के द्वारा उनकी सृष्टि की सेवा करो और ज्ञान के द्वारा उनके अतिरिक्त सबकी सत्ता को अस्वीकार करो। सिवाय परमात्मा के स्वतंत्र सत्ता और किसी का नहीं है, सिवाय परमात्मा के अविनाशी तत्व और कुछ नहीं है, सिवाय परमात्मा के सदा के लिए साथ देने वाला संसार में कोई नहीं है। जो भाषा अच्छी लगे, जिस ढंग से अपने को पसंद आवे, उसी ढंग से मान लेना। तो क्या होता है कि ज्ञान के आधार पर मिथ्या संबंध टूट जाता है, ज्ञान के आधार पर मिथ्या विश्वास छूट जाता है। तो जब असत विश्वास और असत संबंध छूट जाता है तो श्रद्धा के आधार पर सत्य में विश्वास और सत्य का संबंध पक्का हो जाता है। तो संबंध पक्का हुआ तो काम बन गया। और मैं क्या बताऊं, जब स्वामी जी महाराज के कहने सुनने से किसी प्रकार से, बहुत खुशी से नहीं लेकिन ऐसा सोच करके कि दुनिया में जब कहीं कुछ है सार युक्त है ही नहीं है, तो भाई संत जो कहते हैं तो मान के देखो कैसा होता है। एक प्रकार से संत की वाणी का प्रयोग करके देखो कि कैसा होता है। तो प्रयोग करने की आदत तो थी ही, बहुत समय बहुत शक्ति प्रयोगशाला में बिताया था, तो हमने कहा कि संत की वाणी को जीवन में लगा करके देखो कैसा होता है, उसी को प्रयोग कहते हैं। तो बाद में मैं ऐसा कहने लगी कि स्वामी जी महाराज, आदमी तो ज्ञान के प्रकाश में संसार की नश्वरता देख करके दुखी होके संसार को छोड़ता है, ठीक है ना? खुशी से नहीं छोड़ा जाता, दुखी होके छोड़ता है आदमी की। अब क्या बताएं, बड़ा अच्छा लग रहा था लेकिन इसमें कुछ सार है नहीं, इसलिए भाई इसकी ओर से अपने को हटाओ। तो आदमी तो इधर की ओर से निराश हो जाता है तो कहता है कि भाई छोड़ो, हटाओ, इसमें कुछ है नहीं। और तब कहीं जाकर के उसके भीतर
अपने हृदय के सूनेपन को भरने के लिए परमात्मा को मानने की आवश्यकता होती है। तो एक प्रकार से ऐसा समझो कि हम लोग विवश होकर के संसार की ओर से दुखी और निराश होकर के परमात्मा को पकड़ते हैं। अगर काम चल जाता है इधर से तो हम तो कहते कि महाराज तुम तो आराम करो साकेत में बैकुंठ में, हम तो यही खेलेंगे। सच्ची बात है, अगर संसार के साथ निपट करके फंस करके आदमी का काम चल जाता तो परमात्मा को तो हम लोग साकेत में बैठा ही देते कि बढ़िया स्थान है आप वहां बैठे रहिए। लेकिन क्या बताएं, काम चलता ही नहीं है किसी प्रकार से। तो मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज, मैं तो झक मार करके संसार की ओर से हट करके आपके कहने से परमात्मा को मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन हमारे जैसे तो उनके पास न जाने कितने हैं। तो मेरा कहना वो न माने तो बचपने की बात है ना, तो पढ़ने लिखने का कुछ असर तो दिमाग पर होता ही है, तर्क आ ही जाता है, बुद्धिमानी काम करने ही लगती है। तो हमने बुद्धि लगाई, हमने कहा हमारे जैसे तो असंख्य असंख्य उनको पुकार रहे हैं, तो अच्छे अच्छे भक्तों की पुकार सुनेंगे, हमारे जैसे लड़ने झगड़ने वाले की बात काहे को सुनेंगे। तो नहीं सुने तो भगवत भक्त संत का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया, एकदम उनका कंठ तो भर गया, आंखें सजल हो गई और अधीर होकर के कहते हैं कि देवकी जी ऐसा मत सोचो, प्रभु का स्वभाव कितना कोमल है और मनुष्य के साथ नाता रिश्ता मानना उनको कितना प्रिय है ये बात तुम्हें मालूम नहीं। अरे भाई, एक माँ की गोद में नया पैदा हुआ अबोध शिशु पड़ा हुआ है तो सब लोग सोचते हैं कि पैदा हुए बच्चे को माँ की बड़ी भारी जरूरत है नहीं? लेकिन तुम सोच के उल्टी तरफ से सोच के देखो तो माँ को शिशु की जरूरत नहीं है क्या? क्या राय है? अरे भाई, माँ के हृदय में जो वात्सल्य रस उमड़ रहा है तो गोदी में बालक नहीं होगा तो वो रस किसके काम आएगा? तो बालक से सूनी गोद भी माँ का गोद कहलाएगा क्या? बालक के बिना माँ का मातृत्व सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे कह करके महाराज जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई तुमको भगवान की जरूरत है, ऐसे इतना ही मत सोचो। अरे उनके भीतर जो प्यार करने के लिए रस लहरा रहा है तो हमारे जैसे दीन दुखी गरीब निर्मल असमर्थ तुच्छ प्राणियों को गोदी में नहीं उठाएंगे तो भरेंगे कैसे? कितनी बढ़िया बात है। तो केवल तुम्ही को परमात्मा की जरूरत है ऐसी बात नहीं है, उनको भी तुम्हारी जरूरत है। किस लिए? कि उनके हृदय में जो वात्सल्य रस लहरा रहा है तो वो किसको पिला करके निहाल करेंगे? कोई तो चाहिए। तो हमारे जैसे बिगड़े हुए भटके हुए थके हुए पहुंच जाए उनके पास तो उनको बड़ा आनंद आता है। ये तो स्वामी जी महाराज ने पढ़ाया मुझे, सुना मैंने, हमने कहा अब मामला कुछ ठीक मालूम होता है। और नहीं तो इतना अपने भीतर विद्रोह भरा था, मैं सोचती थी कि जब अपने कर्मों के फल अपने को भोगना ही है तो महामहिम परमात्मा बैठे रहे अपनी महिमा लेकर के, हमको क्या गरज है उनसे। लेकिन जब महाराज जी ने कहा कि नहीं भाई, जिनको वे अपने प्रेम से भरपूर करना चाहते हैं उनको वे संसार में फंसने नहीं देते हैं, तब तो हमको बड़ा आनंद आ गया। तो मैं हाथ जोड़ने लगी, मैं कहने लगी भगवान आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आपने जीवन को आरंभ करते ही मेरे फंसने के सब दरवाजे बंद कर दिए। नहीं नहीं नहीं, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर मत जाओ, सब दरवाजे एक साथ बंद कर दिए। और भीतर में चेतना तो थी ही, जागृति तो थी ही, जीवन के प्रति एक अदम्य उत्साह था। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि दुख की परिस्थिति के आगे आदमी झुक सकता है, हमारे चिंतन में नहीं आता था। आंखों से आंसू मैं कभी निकलने नहीं देती थी, भीतर से अगर कभी ऐसी घड़ी आ भी जाए तो मैं डांटती थी अपने को। ये बचपन की बात है, खबरदार जो आंसू गिराए। आंसू गिराना तो मानव जीवन का अपमान करना है। तो बड़ा बड़ी भारी तीव्रता थी अंदर में, जिंदगी तो होनी ही चाहिए, ये कोई बात है कि परिस्थिति पलट जाएगी और हम ऐसे रोएंगे? तो हम रोए तो कभी नहीं, और सृष्टिकर्ता से भी झगड़ते ही रहे। लेकिन आज उनकी कृपा से, उनके भक्त की वाणी का आधार लेकर, आप भाई बहनों को मैं उन्हीं का प्रतिरूप मानती हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लाली देखो, तुम्हारे भीतर बोलने की वासना है तो तुम्हारे प्यारे ही श्रोता बनकर बैठते हैं, तो पूजा के रूप में ही उनको सुनाना। तो मैं आदमी को नहीं सुना रही हूँ, मैं उन्हीं को सुना रही हूँ। इतनी जल्दी से संभाला उन्होंने, तो अब मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। तो कहती हूँ कि बिगड़े हुए बच्चों को माँ बाप ज्यादा चाव से संभाल लेते हैं, पकड़ के रखो कहीं फिर न गलती में पड़ जाए। ऐसे ही हमारे और उस परमात्मा के बीच में इतना घना संबंध है कि कोई क्षण ऐसा नहीं बीत रहा है जबकि उसकी कृपा दृष्टि आप पर बड़ी न हो। कोई क्षण ऐसा बीत नहीं रहा है। अपने प्रमाद से, अपनी भूल से हम उसकी ओर देखते नहीं हैं। हम कहते हैं ठहरो महाराज, अभी हमको थोड़ा और खेलने दो। ये दशा तो प्रेम का अनन्य स्रोत परमात्मा ही है, और उसको अपना मानो यही सबसे बड़ी साधना है। अपना मानो संसार को, और भजन करने बैठो भगवान का तो भजन बनता ही नहीं है, नहीं बनता है। अपना मानो शरीर को, अपना मानो संपत्ति को, और नाम लेने बैठो भगवान का तो नाम लिया ही नहीं जाता है।